गंगा जय निताय गौरांगा निताय गौरांगा 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 गौर हरि निताय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि निताय गौरांगा जय निताय गौरांगा निताय गौरांगा जय निताय गौरांगा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे नगर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन नोएडा में आज बहुत पावन भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ यात्रा के दिवस पे आप रविवार के प्रेम और विश्वास के सत्संग में पधारे हैं, आपका स्वागत करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने रविवार के दिन लोगों को छुट्टी होती है तो उनका प्रेम भगवान में बढ़े और भगवान के शास्त्र के ऊपर और भक्तों के ऊपर भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास बढ़े, इसलिए यह रविवार का प्रेम और स्नेह का सत्संग का आयोजन रखा है पूरे विश्व में। और आज का दिन आषाढ़ी द्विज, आषाढ़ महीने की दूज, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हमारे चार धामों में एक पुरी धाम है हिंद महासागर के तट के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ और उनके अग्रज बड़े भाई बलराम और उनके मध्य में उनकी बहन सुभद्रा विराजमान है और जगन्नाथ जी के साथ में ही उनका दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र विराजमान है। ये भगवान श्री जगन्नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है और कलयुग में विशेष रूप से लकड़ी के विग्रह के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में 10,000 साल तक कलयुग में पति तपावन के रूप में रहेंगे, पतितों का उद्धार करेंगे। कलयुग में सारे ही पतित हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान का ये श्री विग्रह है। ऐसा ये जगन्नाथ जी का रूप, आज 15 दिन तक इनका दर्शन नहीं हो रहा था, पर्दे बंद थे। रात इनका पहली बार दर्शन 15 दिन के बाद जगन्नाथपुरी में खुला होगा और यहां भी। और आज रथ यात्रा के ऊपर आरूढ़ होके ये एक ही विशेष और विलक्षण मंदिर है जिसमें स्थापित मूर्तियां मंदिर से बाहर निकलती हैं और यात्रा में जाती हैं, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठित किए हुए स्थापित मूर्ति बाहर नहीं निकलती है, उनके आगे छोटी उत्सव मूर्तियां होती हैं वो बाहर जाती हैं। ये तो साक्षात भगवान बाहर रथ के ऊपर चढ़ के और कोई 2-3 किलोमीटर का वरदान जगन्नाथ के मंदिर से निकलते हैं और सामने 2-3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गुंडीचा मंदिर है, वहां तक रथ जाता है। फिर वहां 7 दिन तक भगवान वहां गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, उधर वृंदावन का भाव है और जो पुरी का मंदिर है ये द्वारका है। तो भगवान द्वारका से वैभव से रहते हुए अपने भक्तों से प्रेम से प्रेमी भक्त ब्रजवासियों को मिलने के लिए द्वारका से वृंदावन जाते हैं, ऐसा इसका भाव है। और ये जो रूप है भगवान जगन्नाथ का, बड़ी बड़ी खुली आंखें, हाथ शरीर में धंस गए हैं, पांव शरीर में धंस गए हैं, नहीं दिखते हैं, ये भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के विरह में, भक्तों की याद में, और भक्त कितना मेरे लिए तड़पते हैं उनको देखकर ऐसा रूप भगवान का हो गया। तो ये भगवान का करुणा का, दया का, भक्त वत्सलता का, भक्तों के प्रेम का स्वरूप है। और जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में तो प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ है, श्री कृष्ण है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जय गौरा सेय कृष्ण सेय जगन्नाथ, जय गौरा जो गौरंग महाप्रभु है, सेय कृष्ण वही कृष्ण है, सेय जगन्नाथ वही जगन्नाथ। वो जब वो जगन्नाथपुरी में 18 साल तक रहे और उनके अनुयायियों ने जगन्नाथ के प्रति चैतन्य महाप्रभु के स्नेह प्रेम के भाव को जब देखा तो श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य है कृष्ण भावना अमृत संघ के, पहली बार भारत की सीमाओं से इस रथ यात्रा के महाउत्सव को 67 में भारत से बाहर इसका एक रथ यात्रा का आयोजन किया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। और 67 के बाद आज तक दुनिया में कोई ऐसा बड़ा महानगर नहीं है जहां रथ यात्रा नहीं होती है, साल भर भगवान का दर्शन लोगों को हो रहा है। कितना ये भगवान दयालु है, जैसे भक्त जहां जाते हैं भगवान उनके पीछे जाते हैं, जैसे गाय जाती है, गाय का बछड़ा जाता है बच्चा तो गाय उसके पीछे जाती है, छोटा गाय का बछड़ा आप ले जाओ गाय पीछे जाएगी, भक्त जहां जाएगा भगवान उसके पीछे जाएगा, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ से श्रील प्रभुपाद का बचपन में इतना स्नेह था कि जब वो 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे अपने पिताजी को कहा कि मेरे को छोटा रथ बना के दो, मैं अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ रथ यात्रा का उत्सव मनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने बचपन में अपने स्कूल के बच्चों के साथ छोटा रथ बना के और उत्सव मनाया और प्रसाद बांटा सब में। और जैसे वो 15-16 साल के होने लगे तो वो हमेशा टाइम टेबल देखते हैं कि पूरी कब जाती है गाड़ी कलकत्ता से। उनका बहुत बड़ी तीव्र इच्छा था कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां 18 साल संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहे। क्यों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे जब वो वृंदावन के लिए निकले थे, ये एक अपने आप में रहस्य है, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए, भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन किया, और जब 1965 में श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश को कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवत गीता और भागवत की शिक्षाओं को पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देशों में आप जाके प्रचार करो, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उस जमाने में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो एक पानी के सामान माल उठाने वाले भार उठाने वाले जहाज में एक दान के टिकट के ऊपर कलकत्ता से रवाना होकर एक महीने की यात्रा के बाद अमेरिका में पहुंचे। 66 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस इस्कान का स्थापना किया, रजिस्टर किया। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मेरा भक्त मेरे कार्य को विश्व में करने को गया है, मुझे जाके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो एक साल के बाद 66 का तो इस्कान की स्थापना हो गई, 65 के जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद जी वहां पहुंचे थे। तो 65 के तो 2-3 महीने हो गए, 66 में जून जुलाई में रजिस्ट्री हो गई। तो कोई इस्कान के पंचीकरण के 2-4 महीने के बाद प्रभुपाद जी अपने टेबल के ऊपर आके बैठे तो आगे जगन्नाथ जी, छोटा सा मूर्ति जगन्नाथ की पड़ी है। उस वक्त अमेरिका में बहुत भारतीय नहीं रहते थे। अमेरिका का कानून 1965 तक था कि कोई एशिया से वहां माइग्रेट करके नहीं आए, क्योंकि बहुत चाइनीज गए थे तो उन्होंने कानून बना रखा था। उस वक्त कोई 2-3 हजार से ज्यादा भारतीय नहीं थे अमेरिका में। तो ये मूर्ति जगन्नाथ जी, प्रभुपाद जी आश्चर्य लगा कि ये जगन्नाथ की मूर्ति यहां टेबल के कैसे आ गया। तो 2-4 शिष्य थे, उनसे पूछा ये कैसे आया। तो उन्होंने कहा एक देवी शिष्य है प्रभुपाद जी कहके, मालती उसका नाम है, वो लाई है। कहां से लाई, बुलाओ मालती को। मालती को बुलाया, प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये देवी कहां से लाई हो। प्रभुपाद जी मैं आज बाजार में गई तो एक जगह पे भारत से आए हुए सामान का प्रदर्शन था उस दुकान के अंदर, तो मुझे ये अच्छा लगा। अब कैसे भगवान जगन्नाथ उसको अच्छा लगा, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वो अंदर से उसको कहा कि मैं यहां बैठा हूं, तुम इधर आओ और मेरे को यहां से उठाओ। तो उसको वो अच्छा लगा। उसके पास जेब में पैसा नहीं थे, पैसा था ही नहीं। वो 2-4 चक्कर आगे पीछे लगाए तो भगवान उसको जैसे बुला रहे हैं, इधर आओ उधर आओ, मेरे को ले चलो मेरे को ले चलो। तो उसने आकर ऐसे किया, उस भगवान को ऐसे उठा के अपने पर्स में डाल दिया और पर्स में डाल दिया और लाके प्रभुपाद के टेबल पे रख दिया। अब ये कैसे हुआ, ये तो भगवान की अपनी प्रेरणा से हुआ। और प्रभुपाद ने देखा तो प्रणाम किया सबके सामने। वो छोटी सी, वो इतना छोटा जगन्नाथ था, कोई होगा 6-6.5 फुट का होगा। और उसको प्रणाम किया तो सब आश्चर्यचकित, ये तो गुड़िया को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो कोई शो पीस है। अरे प्रभुपाद, नहीं भगवान जगन्नाथ आ गए, भगवान जगन्नाथ आ गए। फिर पूछा तुम देख लाई हो, उधर 2 ऐसे और होंगे। बोला हां थे, इसके पास में 2 और थे, लेकिन इसी ने मुझे कहा ले चलो। बोला जाओ और भी 2 लेके आओ। अब तो उसको आशीर्वाद मिल गया, वो सीधी गई उसी दुकान में 2 चक्कर लगा के 2 और भी पर्स के अंदर मार के लाए। बोला भगवान कोई पैसों से थोड़ी खरीदे जाते हैं, भगवान जिसके पास जाना चाहे अपने आप आते हैं। अब जैसे ये 3 वहां ठाकुर जी आ गए, प्रभुपाद ने कहा देखो, फिर कथा बताई उनको कि एक बार इंद्रद्युम्न महाराज को स्वप्न हुआ कि समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा लकड़ी आएगा, उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाना। तो महाराज जैसे समुद्र के किनारे गए तो बहुत बड़ी लकड़ी वहां उनको मिली और उस लकड़ी से जगन्नाथ की मूर्तियां बनी। ऐसे प्राणों में, कुछ प्राणों में ऐसे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला जगन्नाथपुरी, अपनी लीला द्वारका में पूरी करके सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का वहां से संहार करा के फिर स्वयं अपने धाम चले गए, एक दृष्टि से वो ऐसे ही समुन्द्र में कूद पड़े और जगन्नाथपुरी में वो फिर लकड़ी के रूप में प्रकट हो गए, जगन्नाथ बन गए। ऐसा भी पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका से जाकर और कलयुग में फिर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होके आके बैठ गए। तो वो लकड़ी वहां से लाए, फिर उसमें से ऐसी सुंदर विग्रह मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू कराया महाराज ने। तो विश्वकर्मा उसके काम के लिए बूढ़ा बढ़ई होके आया, वो प्रभुपाद जी उनको कथा बता रहे हैं ऐसे। और उस बनाने वाले ने ये वचन लिया कि महाराज जब तक मूर्ति पूरी नहीं हो तब तक आप अंदर नहीं आना, हम काम करते रहेंगे, आप आए तो हम आधे में छोड़ के चले जाएंगे। तो राजा को बड़ी उतावली थी कि अब ये कब हमारी मूर्तियां तैयार हो जाएंगी, कब हमको स्थापना करना है। तो वो जैसे आवाज आता था खड़ 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 खड़, तो खुश हो रहा था। कुछ दिनों से आवाज नहीं आया क्योंकि वो अभी थोड़ा घिसाई कर रहे थे, तो राजा आतुर होके चले गए कि काम हो रहा है कि नहीं, अंदर जाए तो काम तो कर रहा था लेकिन इतना ही काम हुआ था जितना अभी हुआ है और आगे वाला काम अभी तक नहीं हुआ था। उसने कहा अभी काम नहीं करूंगा, वो अदृश्य हो गया। अब राजा कहता है ऐसे कैसे मैं मूर्तियों की स्थापना कर दूं। उस वक्त नारद जी ने प्रकट होके कहा कि भगवान से मैंने वचन लिया था कि इस रूप में वो धरती के ऊपर लोगों का कल्याण करने के लिए अवतार लेंगे, इसलिए महाराज आप इसको ऐसे ही स्थापन करो। तो पूछा नारद जी आपने कब ऐसे भगवान से वचन लिया था। बोला ये द्वारका की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जब अपने 16108 रानियों के महल में 16108 एक जैसे रूप धारण करके रहते थे तो सारी रानियां कहती हैं रहते हमारे साथ है, रात को सोए सोए गोपी राधा ऐसे उच्चारण करते हैं। तो उन्होंने रोहिणी माता को पूछा कि रोहिणी जी आप तो वृंदावन में रही हैं, ये गोपी ये राधा ये कौन है, इनसे कृष्ण का कैसा संबंध का प्रेम का संबंध है, हमको ये कथा सुनाओ। रोहिणी देवी कहती हैं आओ आप सब बैठो सभा में, मैं आपको कथा तो सुनाती हूं लेकिन ये कथा मैं शुरू करूंगी तो कृष्ण बलराम जहां भी होंगे दौड़ते हुए यहां आ जाएंगे और जैसे इस कथा का कोई चीज उनके कान में पड़ गया तो यहां रहेंगे नहीं, वृंदावन चले जाएंगे। तो सबने कहा हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कृष्ण बलराम अंदर आ ही नहीं पाएंगे, दरवाजे के ऊपर सुभद्रा को खड़ा कर देते हैं, उनको अंदर नहीं आने दे। सुभद्रा को दरवाजे के ऊपर खड़ा दिया, कर दिया चौकीदार, और अंदर रोहिणी माता ने कथा शुरू की कि कैसे ब्रज में गैया चराने जाते थे और शाम को गोपियां गोधूली के समय उनके दर्शन के लिए आतुर खड़ी रहती थी और कैसे सुबह सवेले गैया चराने जाने के समय सब अपने घरों के ऊपर छत के ऊपर कृष्ण को जाते हुए देखना चाहती थी। वो कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा से दौड़ते हुए आए तो सुभद्रा ने कहा अंदर नहीं जा सकते, मैया ने मना किया है। तो कान लगा के ऐसे सुनने लगे तो अंदर गोपियों के प्रेम की, कृष्ण के बाल लीलाओं की और कृष्ण के गौचारण लीला की और कृष्ण के गोपियों के संग में रास लीला के कुछ शब्द कान में पड़े तो उनका ऐसा स्थिति हो गई। और उस वक्त नारद जी वहां प्रकट हुए, बात सुन के नारद ने कहा ये आपका रूप बहुत बड़ा अद्भुत, अपने भक्तों की कथा सुन के आपको इतना आनंद आ रहा है, आपके भक्त आपको प्रिय हैं, इस रूप को आप पृथ्वी के ऊपर प्रकट करना। तो इसलिए नारद जी ने कहा ऐसे मैंने भगवान से वचन लिया था। और प्रभुपाद ने उनको कहा अब ये छोटी यहां मूर्तियां अपने आप आई है और निश्चित रूप से ये आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, आप हमारा सहायता करने के लिए भगवान आए हैं, आप इसकी बड़ी मूर्तियां बनाओ। आप तो वो भक्त जाके समुद्र के किनारे लकड़ी वालों को कहा कि लकड़ी दान दे दो क्योंकि पैसों की नहीं लेंगे, लकड़ी भगवान बनाना है। तो किसी लकड़ी वाले ने उनको लकड़ी का दान दे दिया और फिर वो घर में उसको बनाना शुरू किया। और प्रभुपाद को भी आतुरता थी, उनके घर में देखने चले गए कि अभी कितना बना है, तो अभी थोड़ा आधा बना हुआ था और जैसे बन गया तो ये पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की स्थापना इस कान में हुई। अभी कपड़े जैसे यहां देखो कितने सुंदर मुकुट है, कपड़े हैं, उस समय उनके पास कपड़े नहीं थे, ऐसे रंगीन थे, ऐसे के ऐसे रख दिए। प्रभुपाद जी किसी कारण से भारत आ गए, जब यहां से वापस गए तो कुछ साड़ियां ले गए, उनसे फिर कपड़े पहली बार बनाए, लेकिन उन्होंने रथ यात्रा पहली 67 में निकाली, उसके बाद तो बड़ी भव्य रथ यात्राएं निकली। तो एक भाव तो भगवान के इस रूप का ये है। एक और दूसरी बहुत अच्छी दिव्य कथा हमारे आचार्य गण लिखते हैं कि जब 100 साल के लिए भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से राधा रानी और गोपियों से अलग रहने का, परस्पर गोलोक में श्रीधामा और राधा रानी के बीच में एक दूसरे को शाप दे दिया, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण 100 साल ब्रज से बाहर रहे। अब जब यह समय पूरा होने लगा तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में मूर्छित हो गए और मूर्छा में कह रहे मेरी बंसी कहां है, मेरी मुरली कहां है, मेरी वेणु कहाँ है, मेरी पगड़ी कहाँ है, मेरा मोर पंख पंख कहाँ है। नारद जी ने कहा अब ये अभी अगर सचेत हो गए तो तत्काल वृंदावन में भागेंगे, इनको अब वृंदावन का आवेश आ गया है और ये वृंदावन जाएंगे। लेकिन ब्रजवासियों को 100 साल के बाद अचानक इनका दर्शन हो गया तो खुशी के मारे हो सकता है उनके प्राण निकल जाएं, दिल खड़ा हो जाए, इसलिए किसी को पहले भेजा जाए, जो जाए उनको समाचार दे दे कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो सबने कहा उद्धव जी आप तो भगवान के बहुत प्रिय मित्र हो, आपको तो भगवान ने पहले भी संदेश देके वृंदावन में भेजा था, आप जाके संदेश दीजिए कि कृष्ण आने वाले हैं। उद्धव कहता है मुझे तो ब्रज जाने की बहुत इच्छा है, ब्रज के भक्तों का कृष्ण के प्रेम से मैं बृहस्पति का शिष्य ज्ञान में परिपूर्ण था, लेकिन प्रेम का पाठ तो वहां से सीख के आया था, लेकिन मैंने सब ब्रजवासियों को वचन दिया था मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा। कई बार मैंने कहा कन्हैया वृंदावन चलो, बोलता अभी ये काम करके चलेंगे, नहीं गए। और मैं कहूंगा आया तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अब 80 साल आने को हुए हैं और मैंने वचन करके आया तो गया ही नहीं। तो बलराम जी को कहा आप चले जाए, आप तो ब्रज में रहे, आपको सब जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जाए जिसको सब जानते तो हो कम से कम। बलराम जी ने कहा ब्रज में जाने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं भी वचन दे के आया था ब्रजवासियों को कि कृष्ण को मैं लेकर आऊंगा। और मैंने कहा कन्हैया तुम जाओ, बोला दाऊ जी ये काम करके चलेंगे, वो काम करके चलेंगे, और ये कभी गए नहीं, विश्वास मेरे ऊपर भी नहीं करेंगे, और मैं नहीं जाऊंगा। तब सुभद्रा ने कहा मैं चली जाऊंगी, मैं जाके मैया यशोदा के आंसू पहुंच लूंगी, मैं नंद बाबा को मना लूंगी, मैं गोपियों को आलिंगन करके कृष्ण का संदेश दे दूंगी। और सुभद्रा जब तैयार होने लगी जाने के लिए तो बलराम कहते हैं भाई बहन को अकेला कैसे भेजूंगा, आगे तो मेरा रथ चलेगा और पीछे मेरी बहन का रथ चलेगा, अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ब्रज में रुक जाऊंगा। तो इसलिए रथ यात्रा में आगे आगे बलराम जी का रथ चलता है। तो बलराम जी का रथ आगे चला और मातली उनका सारथी बैठ गया, ताल ध्वज उसके ऊपर है, 14 उनके चक्के हैं और लंबाई चौड़ाई 43 के करीब है मेरे ख्याल में। और वो रथ आगे चला है, उनके घोड़ों के भी नाम है, ये तो सारा पूरा वर्णन है इसका। और पीछे सुभद्रा मैया का रथ चला है, अर्जुन जिसका सारथी है, ये दोनों रथ वृंदावन की ओर रवाना हो गए। तब अब श्री कृष्ण भगवान को उसी मूर्छित हालत में उठा के दारुक को कहा तुम रथ लाओ। दारुक रथ लाए, उसके ऊपर गरुड़ का ध्वज है, 16 चक्के हैं, बड़ा नंदी घोष नाम का बहुत सुंदर रथ है। अब कृष्ण कैसे उठाएं, तो नौजवान बड़े बड़े शक्तिशाली 20-30 यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे उठाया, वो लड़खड़ाते हुए क्योंकि अचेत जैसे हैं, लाके रथ के ऊपर बिठाया। आज भी जब ऊपर से लेके आते हैं भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी को तो कहते हैं पांडी विजय, पांडी विजय। वो 50 से ज्यादा दैत्य पति ऐसे करके उठा के एक एक कदम करके ऐसे लेके आते हैं, बहुत भारी है। तो जैसे कोई आदमी नशे में हो या मूर्छ तो उसको उठा के जाते हैं, ऐसे उनके सर के ऊपर बड़े मुकुट होता है और ऐसे झूमते झूमते आते हैं, ऐसे कृष्ण को रथ के ऊपर विराजमान कर दिया। अब ये रथ भी तीव्र गति से द्वारका से वृंदावन की ओर चला। सुभद्रा ने तो पहुंचकर समाचार दे दिया, लेकिन जब श्री कृष्ण का रथ निधि वन के पास आया तब सचेत हो गया ब्रज का। ब्रज के रज की एक विशेष मधुर सौरभ सुगंध है, और विशेष रूप से राधा रानी के अंग से निकलने वाली सौरभ सुगंध वो तो कृष्ण को पता है, और कृष्ण के अंग से निकलने वाली जो विशेष सुगंध है वो राधा रानी को आकर्षण अपने आप कर रही है। श्री कृष्ण रथ से उतर के निधि वन में गए जहां राधा रानी भी मूर्छित पड़ी थी, पहले उनकी 8 सखियां उनके चारों ओर बैठी थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पंखा झेल रही थी, और रुई उठा के नाक के पास रख के देख रही थी सांस ले रही है कि नहीं रही है। और जितने ब्रजवासी राजा रानी के ऊपर कभी आरोप लगाया करते थे वो सब उनके चरणों में प्रणाम करके कह रहे थे, हे राधिका, अब लगता है कि आप ब्रह्म की अग्नि में जल रही हो, पता नहीं प्राण रहे न रहे, हमसे जो आपका अपराध हो गया वो हमें क्षमा करना, हमको तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसे करना पड़ा। जो राधा रानी के नाम की सास थी, ननन थी, जटिला कुटिला, वो भी आके राधा रानी के चरणों को प्रणाम करके क्षमा मांग रही है। नाम का जो अयन घोष, उसका नाम था अभिमन्यु, जो पति के रूप में छाया सीता का पति नाम का था, उसने भी कहा कि मैं आज तक आपके अंग को स्पर्श तक नहीं किया है, आज आपके चरणों में प्रणाम करके मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, हे राधिके, हे ब्रजेश्वरी, मुझे क्षमा करना, हमसे कुछ अपराध हुए हों आपकी प्रति। तो ऐसे सब लोग जा रहे हैं और इतनी देव श्री ऐसे सब हो रहा है यहाँ, और श्री कृष्ण निधि वन में जैसे प्रवेश किया है और गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा तो राधा रानी के कान में कहा, हे राधे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और ये आवाज सुनते ही राधा रानी, जिसकी आंखें अंदर चली गई थी वृह में ऐसे थकी, आंखें खोली और राधा रानी का और गोपियों का ये हाल देखकर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप हो गया, आंखें खुली रह गई और राधा रानी और कृष्ण की आंखें चार हुई, एक दूसरे को दर्शन हुआ, एक दूसरे को देखा। और उस स्थिति में ऐसा जगन्नाथ जी का रूप हो गया जब राधा रानी के भगवान ने विरह के भाव को देखा। तो इस कथा में भगवान का पुनः राधा कृष्ण के मिलन की बात है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है राधा रानी के भाव में, कि राधा रानी कृष्ण से कैसे मिलना चाहती है, कैसे उसका सदा सुमरण करती है, ये तो है चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में। और भगवान श्री कृष्ण है कृष्ण राधा की जुदाई में, ये जगन्नाथ है राधा की जुदाई में। जगन्नाथ का ये रूप है गोपियों की, ब्रजवासियों की, राधाई की, राधा की जुदाई का। और चैतन्य महाप्रभु का रूप है कृष्ण की जुदाई का। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु की आंखें चार होती थी, जगन्नाथ का दर्शन होता था, तो मानो के राधा कृष्ण का मिलन होता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ब्रज में न आकर और जगन्नाथपुरी में रहे और रोज जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। और उनको जगन्नाथ जी हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोर पंख धारण किया हुआ, त्रिभंग ललित रूप में दर्शन देते थे, उनको ऐसे दिखता था। और रथ यात्रा के आगे तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद में मगन होके चार चार नहीं, सात सात बहुत दल बनाते थे कीर्तन के। इसमें एक कीर्तन वाला, कुछ नाचने वाले, कुछ मृदंग बजाने वाले, और महाप्रभु को लगता था कि सबके बीच में नाच रहे। वो इतने तीव्र गति से नाचते थे कि सबको दिखता था कि हमारे, और ऊपर से महाराज देख रहा था कि सब में कैसे नाच रहे हैं। तो किसी किसी को यह दर्शन होता था। और कभी कभार चैतन्य महाप्रभु थक के रुक जाते थे तो आगे रथ नहीं बढ़ता था। और एक बार तो रथ रुक गया, हाथी आगे बांधे, रथ हिला नहीं, और महाप्रभु जब उठ के आए और रथ को पीछे से सर लगाया और आगे आए, जैसे महाप्रभु ने दर्शन किया जगन्नाथ जी का और रथ आगे चल गया। तो महाप्रभु पीछे जाए तो भगवान हल चलने को तैयार नहीं है, महाप्रभु से आगे चले तो रथ चले। तो ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा के संग महाप्रभु का बहुत निकट का संबंध है। और जितने भी महाप्रभु के भक्त अनुयायी जो बंगाल में रहते थे, ओडिशा में रहते थे, वो ये जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले एक महीना आ जाते थे। उन सबको महाप्रभु मालाएं देकर, एक 18 नाला जगह है जगन्नाथपुरी में, एंटर करते हैं तो एक 18 नाला, 18 नाला मतलब एक पानी का नदी जैसा जाता है, उसमें नीचे वो पुल के नीचे जैसे यहाँ 18 खंभे हैं ना, 18 उसके अंदर दरवाजे हैं, वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर का ऊपर का जो चक्कर है वो दिखता है। तो 18 नाला पे स्वागत के लिए चेतना महाप्रभु अपने परिकरों को भेजते थे, माला देकर जो आए उनको वहां स्वागत करके सबको ले आओ और फिर सबको जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाओ, फिर सबके रहने की व्यवस्था करो। और जगन्नाथ रथ यात्रा के समय सारे ही भक्त आते थे और महाप्रभु उनके साथ नृत्य कर, रथ यात्रा में नृत्य करके सबका भोजन कीर्तन और रथ यात्रा के बाद सब फिर विदा लेके वापस जाते थे। ये प्रतिवर्ष का नियम था। एक और कथा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई है जिसमें युग का तीर्थ स्थान था। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व था, धर्म क्षेत्र कहते थे, और वहां बहुत ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा सरोवर है और विशेष रूप से वैदिक भारतीय ज्योतिष में जब भी ग्रहण होता है, चांद ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो सारे लोग प्रायः किसी जलाशय के पास जाके स्नान करते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जो ये ब्रह्म सरोवर है जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, इसके अंदर स्नान करने का ग्रहण में बहुत बड़ा महत्व है। आज भी ग्रहण के समय लाखों के संख्या में लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो एक सूर्य ग्रहण पड़ा और भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अपने सारे यदुवंशियों के साथ, अपनी सारी रानियों के साथ, मंत्रीगणों और पिता वसुदेव खां के साथ, देवकी के साथ कुरुक्षेत्र में आए। उन्होंने अपना शिविर लगाया और अन्य पूरे भारतवर्ष के राजा आए। तब नंद बाबा भी अपनी बैलगाड़ियों पे ब्रजवासियों को लेकर, गोपियां और राधा ये सब कुरुक्षेत्र में आए। और जब श्री कृष्ण बलराम राम यशोदा मैया से मिलने गए हैं तो मैया यशोदा ने बहुत समय के बाद दोनों बच्चों को देखा था, गए तब 11 साल के थे, अब आए हैं तो 100 साल के हो गए हैं, नहीं ना 80-90 दुनिया की दृष्टि से नौजवान है, लेकिन दोनों को जैसे गोद में लिया, माँ के स्तन में दूध और आंखों में अश्रु धाराएं आ गई और लगे ऐसे लग रहा था कि दोनों भाइयों का मैया ने अभिषेक किया है। और दोनों नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में बाबा ने सर सूंघ के गले से लगा लिया, बाबा के भी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। और फिर कृष्ण और बलराम से अपने अपने मित्र मिले और कृष्ण से अपने मित्र मिले, और जब गोपियां मिली हैं तो राधा रानी कहती है, कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, आज फिर हम मिले हैं, लेकिन जब हम जमुना के किनारे मिले थे, बंसी बट पे मिले थे, उस समय जो मिलने का आनंद था वो यहां आपके इस राजाई रूप में मिलने का आनंद नहीं आ रहा है। ये सामान्य रूप से कविता चेतना महाप्रभु रथ के सामने गाने लगे तो सबने कहा ये क्या गा रहे हैं। जैसे कोई लड़का कहे लड़की को, पहले तुम सब मिला था तब अच्छा लग रहा था, अब मिलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी को समझ में नहीं आया क्या गा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह जैसे वो हरिदास ठाकुर की कुटिया में सिद्ध बाकुल में गए तो रूप गोस्वामी वृंदावन से वहां गए हुए थे, उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा था और वो घास के झोपड़ी में ऐसे रखा पड़ा था और वो स्नान करने गए थे। महाप्रभु ने उस पत्ते को देखा और उसको देख के पढ़ा और पढ़ के पूछा उनके संग में आए हुए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से कि ये रूप गोस्वामी को मेरे दिल की कैसे पता लग गया, कल मैंने वहां ये गाया था। तो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा, बोला ये राधा रानी है जो कृष्ण को कह रही है कि तुम्हारी मेरी मुलाकात ब्रज में होती थी, जमुना के तट पे होती थी, बंसी बट पे होती थी, राधा कुंड पे होती थी, उस मिलने में जो आनंद आता था, ग्वाल बाल कन्हैया आपके स्वयं भगवान के स्वरूप में बंसी हाथ में होती थी, मोर मुकुट पहना हुआ होता था, आज आपको यहाँ राजा महाराजे के वेश में और बहुत सारे मंत्रियों के बीच में आपसे मिलन तो हुआ, लेकिन ऐसा आनंद नहीं आ रहा है। और फिर तो गोपियों ने भगवान जब रथ के ऊपर चढ़े तो रथ के रस्सों को खींचा, घोड़ों को हटा के, और कहा कि हम आपको द्वारका नहीं जाने देंगी, आपके रथ को खींच के हम वृंदावन ले जाएंगी। तो रथ को जब हम खींचते हैं तो भक्तों का ये भाव है गोपियों की तरह, हमारा दिल वृंदावन है और भगवान जगन्नाथ को खींच के हम अपने वृंदावन में विराजमान करना चाहते हैं। और जो ऐसे भगवान का दर्शन करके रथ को खींचता है और उसका भाव अगर भगवान की प्रति भक्ति का है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय में विराजमान होके, और उनके हृदय में अनादि काल से जितने भी दोष पड़े हैं, कलमश पड़े हैं, पाप पड़े हैं, मैल पड़ा है, वो सब धो के साफ कर देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का ऐसे गोपियों का रथ खींचने का वर्णन है। एक और कथा भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि कुरुक्षेत्र के महाभारत के महान युद्ध के बाद ये कुरुक्षेत्र का तीर्थ का समय समाप्त हो गया, कितने हाथी घोड़े मानव का यहाँ युद्ध भूमि के ऊपर जो है कटा हुआ था, तो ये उस वक्त में सारा क्षेत्र जो है ऐसा सफाई वाला नहीं रहा, तो एक और ग्रहण आ गया। और उस समय राधा रानी गोपियों के संग एक और स्थान है, एक दिन राधा रानी बैठी है तो गोपी चंद्रानन पढ़ रही है गर्ग संहिता से कि एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसको कहते हैं बिंदु सरोवर, वो सरस्वती नदी के किनारे पे सिद्धपुर में है, अगर कोई एक बार उसमें स्नान करेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं होगा, तत्काल भगवान श्री कृष्ण से मिलन हो जाएगा। राधा रानी बोली क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ा के जो इस सरोवर में स्नान करेगा तत्काल श्री कृष्ण का मिलन हो जाएगा। बोला सब चलते हैं वहां, और राधा रानी बहुत बड़ा भव्य रथ तैयार किया, और राधा रानी सब सखियों के साथ और फिर ग्वाल बाल रक्षक साथ चले हैं और यहां से बिंदु सरोवर सिद्धपुर में पहुंचे हैं। और उसी समय एक ग्रहण पड़ा और कुरुक्षेत्र न आकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सारे रानियों और यदुवंशियों के संग में सिद्धपुर में आ गए। जैसे ही राधा रानी बिंदु सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश किया और सारी गोपियां चारों ओर खड़ी थी और दूर दूर तक गोप खड़े थे, तो ये यदुवंशी स्नान के लिए जाए, बोला आप नहीं जा सकते हो, इस वक्त वृषभानु नंदनी कीर्ति कुमारी ब्रजेश्वरी राधे नहा रही है, आप नहीं जा सकते हो। कौन है राधा नहा रही है, हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम यदुवंशी द्वारका के हैं। और सत्यभामा कहती है कौन हमसे ज्यादा प्रिय भगवान श्री कृष्ण को है, अरे कौन राधा होती है, हमको क्यों नहीं नहाने देती। ऐसे मन में भाव आ रहा है कि हमें कौन सी कमी है, द्वारका का वैभव है। और भगवान श्री कृष्ण जब ये सुना कि कोई नहीं जाने दे रहा है तो भगवान ने अपना एक संदेश भेजा, जाओ जाओ जाके राधा रानी को बोलो भगवान श्री कृष्ण तत्काल आपसे मिलना चाहते हैं, और आप कहाँ हैं, आपका कहाँ रुकी हैं, वहां भगवान आएंगे। अब राधा रानी स्नान कर रही है तब तक कृष्ण का संदेश आ गया, किस भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आ रहे हैं। राधा रानी कहती है शास्त्र ने सत्य लिखा है, अभी नाया ही नहीं तब तक भगवान के मिलने का समाचार आ गया। और राधा रानी बाहर निकल के तत्काल और सुंदर रतन जड़ित मणियों का सिंहासन तैयार किया है और भगवान जैसे आए हैं उनके ऊपर विराजमान किया है। वो सत्यभामा आदि देख रहे हैं कि यह हमारे पास द्वारका में ऐसा सुंदर रतन मंडित सिंहासन नहीं है, और जैसे ये पूजा कर रहे हैं गोपियां और राधा, ये तो बहुत बड़ी दिव्य गोलोक की पूजा है, द्वारका की पूजा नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा और भगवान श्री कृष्ण राधा के मिलने के बाद सारी भगवान की रानियां राधा रानी से मिली, तब राधा रानी उन सबको संतुष्ट करने के लिए कह रही है बहनों देखो चांद एक होता है, चकोर बहुत सारे होते हैं, सारे चकोर एक चांद से प्रेम करते हैं, ऐसे कृष्ण चंद्र एक है और हम सब कृष्ण से प्रेम करने वाले, और वो सबको आह्लाद देते हैं, आनंद देते हैं, और ऐसे करके रानियों को राजा रानी ने संतुष्ट किया, और भगवान ने फिर ब्रजवासियों के रहने का भी प्रबंध करा दिया। तो रुक्मणी जी राजा रानी के संग बहुत समय रही, और रात को रुक्मणी राजा रानी की सेवा करके उनको देखभाल करके वापस कृष्ण के शिविर में आई, तो भगवान कृष्ण सोए हुए नहीं है, बैठे हुए हैं। तो रुक्मणी कहती है द्वारकाधीश बहुत समय हो गया, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बोला कैसे नींद आए मुझे, हे विद्रभ नंदनी, भीष्मक नंदनी, राधा रानी नहीं सोई है तो मैं कैसे सोऊं? तो पूछा रुक्मणी ने क्यों नहीं सोई है, मैं तो अभी उसको अच्छा सा पलंग बिछा के रेशमी गदे डाल के दे आया हूं। बोला वो तो गाय का गर्म दूध पिएगी तब उसको नींद आएगी। अब तो रुक्मणी भागती हुई वापस गई है, और बहुत अच्छा सा गायों का दूध और चांदी के कटोरे में तैयार करके राधा रानी के सामने रखा है, वो सोई नहीं थी, और दे के जल्दी वापस आ गई। वापस आ गई और भगवान के चरणों को दबाने के लिए नीचे बैठी, तो चरणों के अंदर भगवान के बड़े फफूंदे हो गए। अरे रुक्मणी कहती है आप कहीं गए नहीं द्वारकाधीश, यहां बैठे हुए हैं, आपके पांव कैसे जल गए? बोला रुक्मणी तुमने बहुत गर्म दूध दिया था राधा रानी को, और मेरे चरण उसके हृदय में रहते हैं इसलिए गर्म दूध से जले हैं। तो भगवान के चरणों को जो सदा हृदय में रखता है वो राधा रानी है, और उसके प्रेम में भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप हो गया है। और जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ आज रविवार को आए हैं, और जो सदा आते हैं और आइए, और हर साल रथ यात्रा उत्सव होता है, लेकिन अब जन्माष्टमी उत्सव आने वाला है, फिर राधाष्टमी उत्सव आएगा, जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि आएगा, व्यास पूजा का, ये तो उत्सव बाराई महीने यहाँ चलते हैं। रोज सुबह भागवत की कथा होती है तो मानो भगवान से मुलाकात होती है, रोज शाम को भगवत गीता का सत्संग होता है। तो आप सबको निमंत्रण है, आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप पुनः आइए। और ये मंदिर प्रभुपाद जी ने कहा है, हमने केवल लोगों को मूर्तियां दिखाने के लिए नहीं, उनको भगवान की शिक्षाओं के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। आपका और भगवान का कोई संबंध है तब आप यहाँ आए हैं, भगवान से कोई आपका संबंध नहीं होता तो क्यों आते? भाई किसी के घर में आप कब जाते हैं? जब उनसे कोई रिश्ता होता है तब ना। तो ये भगवान का घर है, तो भगवान के घर में आप आए हैं तो भगवान से आपका कोई रिश्ता है, कोई संबंध है। आपको भूल गया है कि आपका क्या रिश्ता है। हम सबका एक रिश्ता भगवान के साथ है, एक अलग कृष्णा ईश्वरा और सब भृत्य। सुचेतना चरित में चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक अलग कृष्णा ईश्वरा, एक भगवान ही स्वामी है और हम सब उनके सेवक हैं। ये हमारा रिश्ता है भगवान के साथ। जैसे हनुमान से पूछो राम कौन है तो कहेगा मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये चेतना महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि जीव आत्मा का पहचान ही ये है कि वो भगवान का नित्य दास है। इसलिए भारतवर्ष में आपके तीन चार पीढ़ी पीछे बड़े बुजुर्ग इतने बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ये आपकी पीएचडी एमबीए एमडी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटों का नाम रखते थे नारायण दास गोपाल दास, ऐसे नाम रखते थे, सबके पीछे दास लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब भगवान के सेवक हैं। आप अपने पुराने बुजुर्गों के नाम देखो, सबके नाम के पीछे दास लिखा होगा और भगवान का नाम होगा। वहां नारायण दास होगा, कोई गोपाल दास होगा, कोई धर्मदास होगा, कोई कृपाल दास होगा, तो सबके पीछे दास लगा होता था, रामदास। तो ये जो परंपरा है दास नाम लगाने की, ये हमारी पहचान है, ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। और फिर सेवा करते करते कोई कहे कि भगवान मेरा मित्र है अर्जुन की तरह, तो भगवान मित्र बनने को तैयार है। कोई प्रेम से कहे कि भगवान हमारा बालक है जशोदा की तरह और लाला को मैं सेवा करूंगी, तो भगवान बालक बनने को तैयार है। और कोई कहे गोपियों की तरह, अरे हमारा ये प्रेमी है, हम इससे प्रेम करती हैं, तो भगवान प्रेमी बन को तैयार है। आपका कोई संबंध है उसको आप जगा लो, जब तक ये संबंध भगवान से नहीं जगा तब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का बंधन तब तक है जब तक भगवान से संबंध नहीं स्थापित हुआ। जब तक भगवान से संबंध नहीं है तब तक संसार का बंधन है। जैसे भगवान से संबंध हो गया संसार का बंधन अपने आप खुल जाएगा। जैसे ही वसुदेव ने छोटे बालक कृष्ण को गोद में उठाया सारे बंधन खुल गए, हथकड़ी निकल गई, पांव की बेड़ी निकल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, सारे बंधन अपने आप खुल गए। जैसे ही बंधन संबंध हो गया, ये हमारा बेटा है, तो बस सारे बंधन अपने आप खुल गए। जैसे ही संबंध स्थापित भगवान से हुआ सारे बंधन समाप्त। इसलिए आपका मंदिर में आना किसी संबंध के कारण है, उस संबंध की जानकारी, संबंध का ज्ञान यहां प्राप्त करने का सौभाग्य के आपको प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद के स्थापना द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा स्थापित किए हुए मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, केवल लोगों से कुछ मांगने के लिए नहीं है, लेकिन उनको भगवान की शिक्षाएं देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार कहीं बड़ा भव्य मंदिर बना रहे थे तो लोगों ने आलोचना की कि स्वामी जी लोग बहुत दुखी हैं, उनके लिए कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, आप इतना मंदिर के ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कौन कहता है मैं मंदिर बना रहा हूं, ये तो हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, हमारे सारे भक्त इसके अंदर बहुत बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। आज दुख से कहना पड़ता है कि दुनिया में बहुत से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, कहीं भी आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, कहीं भी भगवत प्रेम का प्रसंग नहीं चल रहा है, केवल भौतिक अविद्या संसार में बंधन में डालने वाली दी जा रही है। हमारे ये मंदिर बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहां लोगों को आत्मा का बोध कराया जाता है और भगवान से प्रेम के विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। और अन्य स्थान पर प्रभुपाद ने कहा कौन कहता है ये मंदिर बना रहे हैं, ये हमारा चिकित्सालय है, यहां मानसिक रोगी, चिंता में ग्रस्त रोगी, जो बहुत बड़े मानसिक तनाव में परेशान लोग हैं, ये बड़े बड़े बिल्डिंगों के जंगल में रहने वाले इन लोगों के लिए हमारे मंदिर आध्यात्मिक चिकित्सालय हैं, जहां उनको शांति मिलती है, जहां वो जब आते हैं तो भगवान के पवित्र नाम और अमृत कथा, अमृत का पान करने से उनकी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय भी हैं, ये आध्यात्मिक चिकित्सालय भी हैं, और ये भगवान से संबंध स्थापित करने वाले, भगवान का दिव्य तीनों गुणों से परे निकेतन है, ये हरि निकेतन है, इसमें भगवान रहते हैं, तो ये भगवान का घर है। तो आज आप यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत है। अब आनंद से आधा एक घंटा कीर्तन कीजिए, फिर सबके लिए जो भी प्रसाद की व्यवस्था है भक्त सेवा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे।